बड़ा चाट का रिश्ता क्या कहलाता है? चाट सिर्फ स्नैक नहीं है, ये दिल्ली और यूपी की तहजीब से निकली है। होली और ईद के मौके पर बनने वाली डिश से 800 साल से अधिक का सफ़र तय करने के बाद ये हमारे आज तक पहुंची है। अपनी इस यात्रा में चाट ने क्या क्या बदलाव देखे, ये कहानी कोई कम दिलचस्प नहीं। अनूठी विशाल बता रही हैं इस बदलाव के बारे में। देश की बेस्ट स्ट्रीट फूड की बात हो तो अक्सर चाट का जिक्र होता है, लेकिन ये बात रह जाती है कि यह दिल्ली और उत्तर प्रदेश की साझी संस्कृति की देन है। चाट असल में शाहजहानाबाद की गंगा जमनी और सिंधु गंगा तहजीब का कोलाज यानी मिला जुला रूप है। इसमें इन संस्कृतियों के अलग अलग समुदायों के घरों में बनने वाली कई डिश मिली हुई हैं। दही वड़ा, दही गुजिया और दही फुल्की जैसी पारंपरिक चाट होली और ईद के मौके पर घरों में सदियों से बनती रही हैं। दही गुजिया की खास बात यह है कि इसमें नारियल, सूखा मेवा और चिरौंजी भरी हुई होती है। दही या दूध में डुबोए गए सूखे दाल के वड़ों का इतिहास भी बहुत पुराना है। इसका जिक्र 12वीं सदी के चालुक्य राजाओं के दौर के मानसोल्लास नाम के संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ में मिलता है। राम लड्डू का पूर्वज दही वड़ा इसी परंपरा से निकला है। ये अक्सर होली के मौके पर घरों में बनता है। देश में सदियों से इसके शौकीन रहे हैं। तब अमीर घरों के रसोइये इसे बनाने के लिए उड़द दाल को इस तरह मिलाते थे कि उससे बिल्कुल हल्के वड़े बनते थे। वे इसे मिलाने के तरीके को गोपनीय रखा करते थे। ये बेकिंग सोडा से पहले का दौर था। तब हल्के वड़े बनाने के लिए उड़द दाल के मिक्सचर को कितना फेंटना है, ये बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती थी। दही वड़े में कोई भी चटनी नहीं डाली जाती थी। इस पर सिर्फ भुने हुए जीरे का पाउडर और काला नमक छिड़क दिया जाता था। इसके बाद जरा सी सौंठ डाल दी जाती थी। मूंग दाल की पकौड़ी भी ऐसी ही डिश है। इसे दिल्ली की सड़कों पर बिकने वाले राम लड्डू का पूर्वज कहा जा सकता है। ये बाहर से करारी और अंदर से नरम होती है। मूंग दाल की पकौड़ी को धनिए की चटनी के साथ या दही के साथ परोसा जाता है। आम घरों में होली और इफ्तार पर आपको ये डिश मिल जाएगी। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की इसी साझी तहजीब की देन है सिरके वाला गाजर कांजी, जो वसंत ऋतु शुरू होने पर बनाया जाता है। अफसोस की बात यह है कि पुरानी दिल्ली में अब ये कुछ ही जगहों पर मिलती है। खोमचे वाले कहाँ गए? जब चाट घरों से निकलकर बाजार में पत्तलों पर परोसी जाने लगी, तब इसमें और नयापन आया। तब खोमचे बैंत की टोकरियों के बने हुए होते थे। खोमचे वाले दोपहर ढलने पर गली मोहल्लों में घूम घूम कर चाट बेचा करते थे। महिलाएं और बच्चे इनका बेसब्री से इंतज़ार किया करते थे। ये वह दौर था जब आम परिवारों में रेस्तरा जाने का चलन शुरू नहीं हुआ था। जब मैं अपनी किताब मिसेज अलसीज टेबल और बिजनेस ऑन द प्लेटर के लिए रिसर्च कर रही थी, तब मुझे पुरानी दिल्ली में कई लोग मिले जिनके मन में अपने पसंदीदा खोमचे वाले की याद ताज़ा थी। इन किताबों में मैंने देश में रेस्तरां के शुरुआती रूपों के बारे में लिखा है। खोमचे वाले के बाद ठेले पर चाट बेचने का दौर शुरू हुआ, फिर छोटी दुकानों से इनकी बिक्री होने लगी, जो आज हल्दीराम जैसी चेन तक जा पहुंची है। चाट के इस सफ़र में एक बदलाव ये भी हुआ कि अब ये पत्तल पर खाने को नहीं मिलती, इसके मसाले भी बदले हैं। पहले जहाँ सिर्फ भुना जीरा और काले नमक से काम चल जाता था, अब उसमें कई मसाले मिला दिए गए हैं। अगर आप चाट के वाकई शौकीन हैं तो आपको पता होगा कि इसमें स्वाद सिर्फ दही सौंठ और चटनी से नहीं आता, इसमें चाट मसाले का भी उतनी ही अहमियत है। हर मशहूर चाट वाले के पास अपना एक खास मसाला होता है। वैसे डिब्बाबंद मसालों के आने से ये परंपरा बदल रही है। दिल्ली के कुल्ले यानी नींबू और अदरक के साथ परोसे जाने वाले छोलों में स्वाद काले चाट मसाले से आता है। इसमें काफ़ी काली मिर्च होती है। उससे इस दौर की याद आ जाती है कि जब देश में हरी मिर्च आसानी से नहीं मिलती थी। कहते हैं कि देश में 15वीं शताब्दी के आखिर में पुर्तगाली हरी मिर्च लेकर आए थे। यूपी के चाट में इस काले मसाले का इस्तेमाल नहीं होता। इस डिश में दूसरे मसाले भी बदल दिए गए हैं, लेकिन जीरे के साथ इसका अटूट रिश्ता रहा है। आयुर्वेद कहता है कि जीरे से खाना पचाने में मदद मिलती है। सर्दियों का मौसम खत्म होने के बाद सुस्त पाचन क्रिया को तेज़ करने की खातिर शायद चाट में इसका इस्तेमाल शुरू हुआ होगा, क्योंकि चाट का सीज़न भी जाड़ा खत्म होने के बाद ही शुरू होता है। सच तो यह है कि पानी में जीरा मिलाकर उसका सेवन सदियों से किया जाता रहा है। इसी ने आगे चलकर जल जीरे का रूप ले लिया। अगर इस संदर्भ में देखें तो गोलगप्पों में भरे जाने वाला पानी हैरान नहीं करता। लखनऊ के चाट वालों को अपने फन पर नाज है। दिल्ली में आलू की टिकिया अब कुछ ही दुकानों पर मिलती है। इसमें चने की दाल का मसाला भरा जाता है। पारंपरिक रूप से इसे दो बराबर के हिस्सों में काटकर हरे धनिए की चटनी और सौंठ के साथ परोसा जाता है। इसमें दही या गाजर का प्रयोग नहीं होता। लखनऊ में पानी के बताशे की पहचान इस बात से की जाती थी कि वे आटे से बने हैं या नहीं। सूजी से बने पानी के बताशों को अच्छा नहीं माना जाता। असल में आटे से बने गोलगप्पों की बाहरी परत बेहद पतली होती है, जबकि सूजी के साथ ऐसा नहीं होता। लखनऊ में मटर की चाट उम्दा जायके की इसी तलाश की देन है। इसमें उबली हुई मटर को तवे पर शमी कबाब के अंदाज में सेका जाता है। इसे आमतौर पर नींबू के रस और अदरक के बारीक कटे टुकड़ों के साथ परोसा जाता है। इस फन पर लखनऊ में मटर की चाट बनाने वालों को नाज है। मैं कई दशक के बाद हाल ही में लखनऊ गई थी, खासतौर पर किंग ऑफ चाट के लिए। दुकान 1990 के दशक में बेहद चर्चित थी। इसके मालिक की ख्याति इनकम टैक्स चुकाने के कारण हुआ करती थी। इस बार जब दुकान पर पहुंची तो वो खाली थी। इसके बावजूद चाट परोसे जाने के अंदाज से कोई समझौता नहीं हुआ है। जब कोई नया ग्राहक मटर की चाट के साथ दही या सौंठ की मांग करता है तो चाट वाला उसे झिड़क देता है। शायद कुछ जायके ऐसे होते हैं जिनके साथ कभी समझौता नहीं किया जा सकता।